यहाँ एक प्रश्न है, हम राग को कैसे पहचान सकते हैं? हमें तो राग ज्ञान मिश्रित रूप में ही जानने में आते हैं। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम राग को कैसे पहचान सकते हैं। हमें तो दोनों मिले हुए नजर आते हैं। मैं पहचान करा देता हूँ आपको। देखिए, जब भी अपने को क्रोध आता है तो क्रोध आ रहा है कि अपने को पता लग जाता है, नहीं लग जाता है? किसको पता लगता है क्रोध आ रहा है? ये पता किसको लगता है? ज्ञान को। तो वो आने वाला और ये जानने वाला दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? क्योंकि इसमें जानने का स्वभाव है और उसमें जानने का स्वभाव नहीं है। तो ये क्रोध परिणाम आता है, वो आकुलता लेके आता है, और ये जाननहार ज्ञान है, वो निराकुल स्वभाव वाला है। इतना बड़ा अंतर है और हम कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। आप रोज दाल खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो, है ना? नमक डली दाल खाते बिना नमक की? बोलो ना। अच्छा, बिना नमक की दाल को आप स्वादिष्ट मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते। देखो यानी नमक ना डालो तो वह दाल स्वादिष्ट नहीं। अच्छा, दाल का स्वाद कहाँ रहता है, दाल में या नमक में? दाल में रहता है। फिर तुमको स्वादिष्ट क्यों नहीं लगती है? आदत खराब है, मिलावट बिना तुम्हें स्वाद आता ही नहीं। केवल का स्वाद लेना आज तक सीखा नहीं। इसलिए राग और ज्ञान का अगर भेद ज्ञान करोगे तो एक की सत्ता स्वपर प्रकाशक पने से रहित है और एक स्वपर प्रकाशक स्वभाव रूप है और उसमें चेतना है और उसमें वो ज्ञान चेतना नहीं है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक आकुलता रूप है, एक निराकुल स्वभाव रूप है, और मैं निराकुल स्वभाव रूप ज्ञानमय हूँ और ये राग आने वाला आगंतुक भाव है और मैं तो रहने वाला घर का मालिक हूँ। क्या कह रहे? कितना अंतर है, बहुत अंतर है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है यदि अपन समझने का प्रयास करेंगे तो। नहीं तो अपन लौकिक कार्यों में तो भेद ज्ञान करते और ये आत्मिक के कार्यों में अपन सब चलने देते, मिलावट चलने देते। ये वास्तव में जैन दर्शन चैतन्य हंसों का मार्ग है। समझा ना? हंस शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। अब वो हंस जो है उसका स्वभाव ये है कि मिलावट को अलग करके सेवन करे वो हंस है, नहीं तो बगला की श्रेणी में आ जाएगा। है ना? इसलिए ये राग ज्ञान की पहचान अभी तक अगर एक मानी हो तो कोई चिंता नहीं करो, लेकिन अब उसके लक्षण को पहचानो। राग का लक्षण वास्तव में अशुचि है, अपवित्र है और अस्थाई है, आने वाला है, जाने वाला है, आकुलता लाता है और आकुलता छोड़ जाता है। लेकिन ज्ञान में, जानने वाले में कहीं आकुलता होती नहीं। ऐसा मैं जाननहार ज्ञान हूँ और ये आने वाला जो है राग है, ऐसा इन दोनों में अंतर जानकर फिर विस्तार से जानना हो तो राग को ज्ञान का अंतर 72-73 नंबर गाथा में किया है। ये आश्रव भाव असुखी है, भगवान आत्मा सुखी है। ये आश्रव भाव जो है वास्तव में दुख के कारण है, भगवान आत्मा सुख का कारण है, यानी ज्ञान सुख का कारण है। ये आश्रव भाव अशरण है, भगवान आत्मा शरण है। इसे बिल्कुल दोनों को कंपेयर करके बताया गया है। अगर ये अभ्यास करेंगे और ना समझ में आए तो पूछेंगे विद्वत वर्ग से, निश्चित ही आपके समझ में आएगा और आप स्व पर का भेद कर सकोगे, राग ज्ञान को भिन्न कर सकोगे। जिन परम प्रेमी सुबुद्धि क्षणी ये तुम कार्य कर सकते हो। इसलिए अभी तक भले जो भूल हुई है होने दो, लेकिन अब आगे इसको कंटिन्यू नहीं रखना है, अब भेद ज्ञान करने का प्रयास करना है। आज के प्रवचन में आपने प्रयोजन परक कथन और वस्तु स्वरूप कथन का नामोल्लेख किया था, कृपया इन दोनों को विस्तार से बताइए। इन दोनों में कौन सा कथन हमें मानना चाहिए? देखो भाई, वस्तु स्वरूप बताने वाला कथन तो आगम उपलब्ध है। आगम में परिपूर्ण वस्तु का स्वरूप निरूपण किया गया, लेकिन अध्यात्म जो होता है उसमें प्रयोजन खोज करके प्रयोजन को पकड़ाता है। क्या कहा? अध्यात्म का काम वस्तु स्वरूप को बताना है और आगम का कार्य और अध्यात्म का कार्य ये है कि वो विस्तार से जानकर उसमें जिसमें अपना प्रयोजन सदे उसे मुख करना है और जिससे प्रयोजन ना सदे उसे गौर करना है। इसलिए वस्तु स्वरूप पर कथन जाने बिना कोई मुख गौण की व्यवस्था नहीं कर सकता। पहले आगम ज्ञान से वस्तु का स्वरूप जानना और वस्तु का स्वरूप जो जानोगे वो अनेकांतमय होगा। उस अनेकांतमय स्वरूप में फिर नए की विवक्षा लगाकर किस नए से हमारा हित निहित है, किस नए के द्वारा हित होगा, उस नए को मुख करके वस्तु को जानना। हालांकि नयों से तो हित होता नहीं है, नयों से तो वस्तु के एक एक अंश का ज्ञान होता है, समझना है। लेकिन वो एक एक अंश का ज्ञान हमें ये ज्ञान करा देता है कि ये क्या है, उपादेय क्या है, आश्रय योग्य क्या है, आश्रय नहीं करने योग्य क्या है, ये इसका ज्ञान हो जाता है। तो जो भी जैसे संवर अधिकार चल रहा है और संवर अधिकार में ये बात चल रही है कि उपयोग और दो उपयोग जो बात की, एक तो नित्य ध्रुव रहने वाला अपना स्वभाव और एक उस स्वभाव के अनुसार प्रणाम करने वाली दशा, ये दोनों ही चलते हैं और दोनों उपयोग पर्याय में तो उपयोग जो होता है प्रगट उसमें सुख भी प्रकट होता है और उसी में ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। लेकिन उस प्रयोजन की सिद्धि पर्याय में कब होती है कि जो त्रिकालीन उपयोग स्वभाव को जाने हैं और उसमें लगे हुए कारवार हो विकल्प छोड़े तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए वो प्रयोजन परक कथन है, प्रयोजन परक कथन आगम बिना नहीं होता और आगम का कथन प्रयोजन परक हुए बिना नहीं बनता। दोनों से कार्य की सिद्धि तब तक नहीं होती है अगर किसी एक का माने समझ लीजिए कोई हे मान ले था और आगम ज्ञान न करे उसे अध्यात्म ज्ञान साचा नहीं होता और अध्यात्म ज्ञान में प्रवेश न करे प्रयोजन न डाले तो आगम ज्ञान का पढ़ना निरर्थक होता है, समझना निरर्थक होता है। ऐसे दोनों के अभिप्राय वाले जिनागम में कथन है और मैं कल एक का समय मिलेगा तो मैं उस कथन के नमूने आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे आगम परक कथन होते हैं और कैसे प्रयोजन परक कथन होते हैं। अभी जो चल भी रही है जो चर्चा और ये संवर अधिकारी की चर्चा, इसमें ज्यादा प्रयोजन परक बात मिलेगी आपको। इसी की चर्चा हम आपको आगम परक भी बताएंगे और वो भी प्रमाण के जरिए बताएंगे। एक में प्रयोजन परक चर्चा बताएंगे गुरुदेव, दूसरे में आगम परक चर्चा बताएंगे डेंसिटी स्वानुभूति दर्शन से, समझना है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रयोजन परक क्या है और आगम परक चीज क्या है और वस्तु स्वरूप परक चीज क्या है। ऐसा
दो दो लीजिए
अंतमा अंतिम सद्भाव बताओ समझाओ तो उपयोग मां उपयोगवान है। अंत होता है अंतिम का तो अंतिम होता है नायक भाव और उसका अंश होता है वर्तमान क्रिया के उपयोग। तो वो अंश जो है वो अंतिम में से प्रकट होता है तो वो अंश में नियम से अनन्य बना प्रसंजित अंतिका होता ही है, उसको बोला जाता है उपयोग में उपयोगवान है। प्रज्ञाचिनी क्या है? प्रज्ञाचिनी का उपयोग बुद्धिपूर्वक किया जाना चाहिए या अबुद्धिपूर्वक उसका उपयोग हो जाता है। प्रज्ञाचिनी माने प्रज्ञाचिनी ज्ञान को बोला जाता है। ज्ञान माने कि आत्मा और राग के बीच में उपयोग को पटकना, उसको बोला जाता है प्रज्ञाचिनी। सचमुच में तो आत्मा और राग पृथक पृथक है, पृथक पृथक है ऐसा ज्ञान में जानना और उसको अलग देखना और दृष्टि द्रव्य पर जाना, उसको बोला जाता है कि ये जीव ने राग और आत्मा के बीच में प्रज्ञाचिनी लगा दी है। ये प्रज्ञाचिनी बुद्धिपूर्वक होती है, अबुद्धिपूर्वक नहीं होती है। वो विचार करके निर्णय करके अपने ज्ञान में यथार्थ निर्णय में आके उसको पता चल जाता है कि आत्मा पृथक है और राग पृथक है, तब ये वो उसका भेदना करके अवैध में चला जाता है।
अनुभूति दर्शन में मुझे बहन की बायरा कहती है कि
इस हरिकल दशा में हमें बुद्धिपूर्वक मैं गए हूँ ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि ऐसे निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप प्रमाण के द्रव्य की प्राप्ति होगी या दृष्टि के विषय शिकारी रूप भगवान आत्मा की। ये जो सविकल दशा में प्रयोग करता है गाय का स्वरूप कैसा है वो पूरे मन का पूरा समझ के जब वो प्रयोग करता है बुद्धिपूर्वक तब उसको जब वो अपने स्वभाव के मंदिर में महिमा आ जाती है उसकी काल गति बन जाती है और मैं गाय हूँ इस प्रकार का श्रद्धा ग्रहण हो जाता है तब उसको मन द्वारा जो प्रयोग होता था मन के द्वारा प्रयोग होता है पांच इंद्री के द्वारा प्रयोग नहीं होता है। पांच इंद्री जो है वो गुरुदेव की वाणी सुने या शास्त्र पढ़े तो वो सब ज्ञान बंद हो जाता है और मन के द्वारा अपना जो अस्तित्व है स्वरूप है उसका अभ्यास करता रहता है। मगर वो जब उसकी महिमा आती है तो वो मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है कोई अतिथि ज्ञान प्रकट होता है। जो अतिथि ज्ञान जो प्रकट होता है उसमें आत्मा जानने में आता है तो प्रथम आत्मा को उधारना फिर उसकी प्रचार करना तो जानने में क्या आता है कि जानने में कैसा आत्मा आता है तो उसमें ये प्रश्न है कि प्रयोग के फल में स्वरूप फल के स्वरूप में प्रमाण के द्रव्य की प्राप्ति होगी या दृष्टि के विषय शिकारी रूप भगवान की प्राप्ति होगी। जब आत्मा आत्मा को जानने उससे प्रणमता है तब उसको शुद्ध भावशुद्ध प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है और भावशुद्ध प्रमाण ज्ञान जो प्रकट होता है उससे सब जानने में आ रहा है उसमें एक अपना जो दृष्टि का विषय वो परम शुद्ध विषय का विषय है वो भी जानने में आता है और व्यवहार का विषय वो भी जानने में आता है। ये सब ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सविकल वेद आकार है तो वेद करके सब जान लेता है। आत्मा का जैसा स्वभाव वो सविकल दशा में निर्णय किया था वो सब अतिथि ज्ञान में जानने में आ जाता है। सविकल दशा जो पहले जो निर्णय करते थे वो क्रम से जानने में आता था एक एक को क्रम से जानता था व्यवहार का विषय क्या है सुधरे का विषय क्या है प्रमाण का विषय क्या है इस प्रकार से जो क्रम से जानता था वो अतिथि ज्ञान प्रकट होने के बाद में वो सब अक्रम से जानने में आ जाता है और उसको शास्त्र में वो निर्विकल प्रमाण और निर्विकल्प नहीं कहते हैं। सविकल्प प्रमाण और नहीं का अर्थ हो जाता है वो प्रमाण नहीं को प्राप्त हो जाता है मगर निर्विकल्प प्रमाण और नहीं प्रकट हो जाता है उसमें प्रमाण ज्ञान का विषय जो द्रव्य परिणाम होती है वो भी जानने में आती है और सुनने के विषय रूप जो द्रव्य है अपना वो भी जानने में आ रहा है इसलिए वो दोनों को इस प्रकार से ज्ञान जान लेता है। निरंतर प्रयोग के फल के स्वरूप प्रमाण के द्रव्य की प्राप्ति होगी या दृष्टि के विषय की तो जो दृष्टि का विषय वो भी ज्ञान परम शुद्ध विषय से जानता है परम शुद्ध विषय से जानता है तो दृष्टि है वो एकांकिक है तो उसके ऊपर ही रहती है और ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान जो उसमें जानता है मगर प्रमाण ज्ञान में भी वो नए ज्ञान पड़ता है नए ज्ञान में वो एक उपाधि पर जानता है तो जो अभेद अपना आत्मद्रव्य है उसको वो सुधरी से जानता है और उसमें रहे हुए जो भेद है उसको उपेक्षित भाव से जानता है इसलिए वो व्यवहार नहीं कहते हैं। इस प्रकार से उसमें आरोप करके अपन कह सकते हैं उस टाइम में वो साधक आत्मा को ये निश्चय नहीं है ये व्यवहार नहीं है ये प्रमाण है ऐसा कुछ भेद करके वो जो नहीं जानते है जैसे केवल भगवान जानते हैं उसी प्रकार से जैसे केवल भगवान दोनों के स्वरूप को जानते हैं मगर कुछ भी नहीं पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं उसी प्रकार से भावशुद्ध ज्ञान में ज्ञानी जो है वो अपने आत्मद्रव्य को उसी प्रकार से जानते हैं वो कोई भी नई पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं मगर अपने आत्मद्रव्य को जैसे केवल भगवान जानते हैं ऐसे ही जानते हैं मगर ये साधक को भावशुद्ध प्रमाण ज्ञान है तो इस प्रकार से वो किसको मुख्य तरह के जानते हैं उसको शुद्ध निर्मा बोला जाता है किसको गौर मान जानते हैं तो उसको व्यवहार भी बोला जाता है दोनों को साथ में जाते हैं तो उसको प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से प्रमाण और नहीं दोनों का ज्ञान एक साथ में प्रकट होता है। इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान भावेन्द्रिय द्रव्य शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान इन सभी पारिभाषिक शब्दों के बारे में स्पष्टता करने की कृपा करें। और ये इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान भावेन्द्रिय और द्रव्य शुद्ध ज्ञान वो सब एक आरती है वो एक इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है मगर वो एकार्थ है वो अपने जो आत्मद्रव्य का जो स्वभाव है ज्ञान का जो स्वभाव है वो अखंड बने स्वर पर सबको प्रकाशित करने का वो स्व के सन्मुख होके सहज बने स्वर पर सबको प्रकाशित करने का उस स्वभाव से युद्ध हो गए, वो एक एक गेय के सन्मुख होके इंद्रिय के माध्यम से पद का अवलंबन करके जो जानने वाला जो ज्ञान है वो उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा जाता है, वो भी इंद्रिय के माध्यम से वो जानने का कार्य कर सकता है, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। एक एक गेय को फ्रंट फ्रंट पड़े जानता है, एक साथ में सब नहीं जान सकता है, एक गेय को जाने फिर उसको छोड़ के दूसरे गेय को जाने, इसलिए उसको फ्रंट फ्रंट ज्ञान कहा जाता है। फिर उसको भागने भी कहा जाता है, द्रवेंद्रिय के अवलंबन से हो जो ज्ञान में जो फंड ज्ञान से उसकी सर्वो होके इसके माध्यम से जानना उसको भावेंद्र भी कहते हैं। और द्रव्य शुद्ध ज्ञान जो शास्त्र का ज्ञान होता है वो भी अपने मन के अवलंबन से या चक्षु इंद्रिय के अवलंबन से खंडन पहले जानता है, ये निद्रा अधिकार है, ये कर्ता कर्म अधिकार है, ये समयता है, ये प्रवचनता है, इस प्रकार से प्रवचनता में ऐसा लिखा है या समयता में ऐसा लिखा है, ऐसा जो अपना ज्ञान का जो अपना जानना होता है उसको द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से ये सब ज्ञान जो है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, वो फटफट रूप से जानना वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। और अभी अपने पास जो इंद्रिय ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान जब तक नहीं प्रकट होता है तब तक उसकी प्रवृत्ति चलती रहती है, फिर उसका अभाव में जब वो आत्मा का आत्मा अनुभव करता है तब भावशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। भावशुद्ध ज्ञान माने वो मति ज्ञान के द्वारा वो दर्शन उपयोग के द्वारा दर्शन उसको पहले आता है, फिर उसका मध्य ज्ञान होता है और फिर शुद्ध ज्ञान होता है। और जो स्वसंवेदन से अपने आत्मद्रव्य को जानता है उसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान से अपने आत्मा स्वसंवेदन से जानने में आ रहा है उसको अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, उसमें कोई भी इंद्रिय का अवलंबन नहीं है, मन का अवलंबन भी नहीं है। वो ये जो भाव शुद्ध ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अखंड ज्ञान है, वो अखंड बने तो आत्मद्रव्य को भी जानता है और उसमें रहे हुए सब भाव को भी जानता है, इसलिए वो अक्रम ज्ञान है। पहले जो क्रम से जानना होता था उसका अभाव हो गए, इंद्रिय का अभाव हो गए, इंद्रिय का अवलंबन का अभाव हो गए, ये का अवलंबन का अभाव हो गए, वो अतिद्रिय ज्ञान प्रकट होता है। जो स्वप्न प्रकाशक है वो प्रकट होता है, वो स्व में तन्मय होके वो जानता है, इसलिए स्व को अनुभवता है, वो पद को प्रकाशन करता है मगर पद को अनुभव नहीं करता है, वो स्व को अनुभव करता है। उसमें वो अपना जो शिकारी अपरिणामी निष्क्रिय पारिणाम भाव है वो उसको उपाधेय बने जानने में मुख्य बने माने उपाधेय बने वो जानने में आ रहा है। इस प्रकार का सब भाव वो उस ज्ञान में अक्रम रूप से गर्भित पड़े रहता ही है।
प्रश्न है, ये सब प्रज्ञापन को श्री जयशंकर ने समग्र शंकर जी का कहा है ऐसा आज आपने बताया, इसका थोड़ा विस्तार से स्पष्टीकरण कीजिए। वास्तविक सब शुरू जहाँ प्रारंभ हुआ उसमें जयशंकर ने लिखा है। एक बार पर आपको ख्याल में मिला इसी संबंध से कि पंचायती का संचय कुछ जीवों को लिखा है और प्रवचनकार मध्यम रुचि जीवों के लिए लिखा गया है और समय साथ विस्तार रुचि वाले जीवों को लिखा गया है, ऐसा जैसा जागरण टीका के प्रारंभ में कहा। और उसी टीका के प्रारंभ में उन्होंने जो इस तरह प्रवचन शास्त्र की अधिकार है ज्ञात प्रज्ञापन वेतत्व और चरणामृत सूचक जो लिखा, ज्ञात प्रज्ञापन को उन्होंने समय ज्ञान अधिकार लिखा है और इसको वेतत्व प्रज्ञापन को दर्शन समय दर्शन अधिकार लिखा है, तो उसमें से कैसे लगता है वो बताना चाहता हूँ। 122 से 126 व्याकरण आचार्यों ने परिणाम और आत्मा की संबद्धता बताई और उसमें एक कितनी महत्वपूर्ण लाइन 126 व्याकरण की उपख्याख्या में लिखी है, इस प्रकार ये बने को प्राप्त आत्मा की स्वतंत्रता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि अनुभव प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए अर्थात आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते हुए द्रव सामान्य की प्रशंसा को समाप्त करते हैं। माने एक पद को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से आत्म तत्व की सिद्धि होने पर ये लिखा है, यानी अपने आत्मा में ही चौद्रजन्य प्रमेयत्व तो शक्ति या गुण है तो उसका स्वरूप है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने। तो सामान्य लोग ऐसा समझ रहे हैं मैं आपके ज्ञान का विषय बनूं, आप मेरे ज्ञान के विषय बनूं, ऐसा नहीं है। ज्ञान जिसका है जिसमें है वो भी प्रत्येक समय ज्ञान का ही बन रहा है, तो इसका ये मन को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय ये कहीं है, देखो प्रवचन सागर की आत्मा की शुद्धता का निश्चय नहीं हो और उसको कहा कि आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। फिर आगे चल के 143 व्याख्या की टीका कौन ही किसी को विस्तार में बढ़िया शब्द दिया जाए तो उन्हीं के शब्द में बोलता हूँ, जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोग है उसे वास्तव में कहां से लिया, सबसे बड़ा आकाश सबसे छोटा क्षेत्र में काल और इसमें सौंद्रियों को ग्रहण करके लिखा, इन पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोग है उसे वास्तव में उसमें अंता प्राप्ति होने पर भी अचिंत ऐसी स्वर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार ये तत्व ये ही है और जीव तत्व ये है तथा ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का विभाग है। आगे और भी है कि जीव को जब तक स्वयं का मात्र नहीं आता और स्वयं अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव ये नहीं बनता तब तक उसको आत्मानुभूति नहीं प्राप्त होती, ऐसे बहुत जगह लिखा है। और आगे चल करके फिर ये सिद्ध किया, अगर आपको इसका कॉन्फिडेंस आ गया 160 का काम है, मैं देह नहीं मन नहीं वाणी नहीं काया नहीं इनका कारण नहीं इनका कर्ता कार्य का आत्मोक्ता नहीं, तब तुम क्या रहे ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा है और उसकी प्राप्ति के लिए प्राणी करके कहते हैं 192 का काम है कि ध्रुवत्व के काम शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, यह ऐसे ही अभिनय चंद्राचार्य का और गाथा भी है एवं नाम महत्वम शुद्धम कुछ कुछ रोमान कह रहे और आत्मा को कैसा मानता हूँ तो कहते हैं ज्ञानात्मक दर्शन भूत अतिद्री महापदार्थ ध्रुव अचल निरालम ऐसा उन्होंने सीखा और शुद्ध ऐसा मानता हूँ अर्थात को जान करके ही माना जाता है ऐसा जीना में हमने चंद्राचार्य तो इस प्रकार से ये समय दर्शन का अधिकार इसलिए लगा अपने में ऐसा लगता है ये तत्वों का वर्णन है तो ये पर गियों को ही ये मान के बैठा है और अपने ज्ञान में स्वयं ही भगवान आत्मा भी बैठे ही है और प्रथम नंबर में वो है न्याय ने ये कहा कि यहाँ दे रहा होगा दीपक जलाएगा तो दीपक पर कोई प्रकाशित करता है स्वयं को भी करता है, ये कृष्णा ने 36 व्याकरण के अधिकार में दिया है जो अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता वो अन्य को प्रकाशित कर ही नहीं सकता, तो जो जीव ज्ञानमय है वो ज्ञान स्वयं को अपने को प्रकाशित न करे न जाने अन्य गेहूं कैसे जान सकता है, इसीलिए सिद्ध किया गया कि स्वयं को यहाँ पर प्रमुखता देकर इसको समय दर्शन का अधिकार कहा है। और भी है दूसरा एक प्रश्न है जो हम सब के लिए है प्रेमचंद जी भरत भाई पंचंद जी के मैं अपनी योग्यता से देता हूँ, आप सभी को एक ही प्रश्न है कि पर्याय को गौण करके द्रव पर दृष्टि करो, कंगन से दृष्टि हटाकर सोने पर दृष्टि करो आदि कहना तो अत्यंत सरल है किंतु इसको प्रयोग में लाकर आत्मप्राप्ति पाने की स्थिति बन जाएगी। मैं पहले इस प्रश्न को थोड़ा इलाबोरेट करूंगा, मान लीजिए मैं और रजनी भाई सभी भाई हैं, ठीक है ना, पर ऐसी मौसी कर और दोनों का न्यारपण हो रहा हो तो घर में पुराने जमाने की आभूषणों सोने के और वे पेंट कर रखे हैं टूटे फूटे हैं आजकल कोई पहनता नहीं समझे और दूसरे जो आभूषण है वे चक्कर टोला कह रखे हैं लेकिन चमकते धमकते हैं आजकल के लिए पहनने की योग्य है और दोनों का बजट एक एक किलो है तो सारे बढ़िया ढंग से सब निपटारा हो गया लेकिन इस बिंदु पे आए पंकज भाई कब क्यों नहीं आए, दोनों टूटे फूटे लेने के लिए आए क्यों आ गए, दृष्टि कहां गई, दृष्टि कहां गई, द्रव कहां सरल इतना सरल है कि वहां जब हमारी दृष्टि चली जाती है पर्याय को गौण कर देते हैं और ये दृष्टांत आकर
क्वेश्चन है आपके मंत्र में 69 नंबर का श्लोक है, घट मौलिक स्वर्णार्थ ना तो उत्पाद स्थिति स्वयं शोका प्रमोद माध्यम जरूर यदि दही कम एक सोने का गलत है और उसके लिए मैं दूसरा उदाहरण बना देता हूँ। मैंने इस तरह दिया है कि मान लीजिए कोई परिक्रमण हो रहा है और उसमें बेगानी जी बदरेन्द्र बने और रजनी भाई मान लीजिए ईशानेन्द्र बने और उस पदार्थी में गए और देखा वो स्वर्ण कलश रखा हुआ है तो इन्होंने जाके कहा कि भैया ये मुझे जाके उन्होंने कहा ये 5000 का ले जाइए रहती है तो बोले मैं अभी रुपया नहीं आया मैं कल सवेरे आती आपसे ले लूंगा आप किसी को देना मत ठीक है कहीं चले गए और जैसे ही उस दुकान बंद होने का समय आया तभी रजनी भाई पहुंच गए बोले भाई मुझे तो अभी तत्काल स्वर्ण का मुकुट चाहिए बोले भैया इसमें तो बहुत टाइम लगेगा कितने टाइम लगेगा मैं बहुत दूर से आया हूँ वापस जाके वापस नहीं आ सकता आप मुझे अभी बना दीजिए तो चाहे जितना रुपया की जरूरत लगे तो वो दुकानदार क्या करेगा रुपया मिल रहा है वो तो बैठे ही समझ और वो स्वर्ण कलश को गला दे और जाकर के मुकुट ढाल दे और उसके ऊपर वो स्वर्ण पा लेते इतने में ये पहुंच गए पता नहीं कब सवेरे मिलेगा भी लेट हो जाएंगे तो क्या होगा वो दृष्टांत उसमें खींचा है कि जिसकी दृष्टि उस पार से है वो प्रसन्न हो रहा है मेरा तो मुकुट बन गया और जिसकी दृष्टि जय पर उसको थोड़ा खेद होगा अरे अब क्या करेंगे इतना बढ़िया बना सका था भैया आप सभी ले जाते लेकिन वो भेजने वाले को क्या हर्ष होगा कि विषाद होगा कुछ नहीं होगा उसका स्वर्ण पूरा है तो जैसे शराब की दृष्टि स्वर्ण से रहती है अथवा कोई स्वर्णभूषण मॉडलिंग करने जाता है क्या मुझे गिर भी रखने जाता है तो वो कसौटी पर करके क्या देखता है खोट भी दिखती है सोना भी दिखता है लेकिन कीमत फिर क्या आता है स्वर्ण ऐसे जिस जीव को सचमुच में लगा होगी जन्म मरण की धारा की छुटकारा पाना है खाने कमाने की वाई दिस लिखा है कि वाई दिस लाइफ फुल ऑफ आई वरी स्टिल वरी जल्दी 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 करो चिंताओं से ग्रह तब तक भरी माने तब तक किया जाता नहीं किया जाता तब तक तो उसके लिए कहा है कि भाई तुम ये सोचो ऐसा तुम अनंत वाले सुखाए सारे जी के तुम्हें सुख कैसा चाहिए कि अविनाशी शाश्वत तो अविनाशी शाश्वत सुख दाता कौन हो सकता है अविनाशी सुख का धारक कोई है अगर तुम स्वयं हो तो उसकी दृष्टि पहले उसकी दृष्टि हो जाती है जैसे गुरुदेव श्री कहते थे बड़ा भगवान छो अरे बड़ा भगवान हाँ वो जो मैंने इंग्लिश में बोला था इतने भाई बता दो क्या है मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कोई अगर से पूछता है क्यों साहब आप एक ही ज्ञानी क्यों मानते दो क्यों नहीं मानते ऐसा प्रश्न हुआ करता था कई बार मैंने कहा आप तीन क्यों नहीं मानते तो एक बार मिला हुए आप चार क्यों नहीं मानते जो वो कहें आपने जिनकी दृष्टि से चले जिनकी चर्चा करते हैं अरे मैंने कहा गुरुदेव कहते थे बता ज्ञानी छो बता ज्ञान ज्ञानवान बनो तो ये तो सब अपनी अपनी दृष्टि से है पर इसीलिए ये बिल्कुल सरल है सचमुच में जैसे कहते ना कि मैं जरा सा दर्शन देकर समाप्त करता हूँ इस प्रश्न का जवाब 92 में मैं सिकंदरी से लौटा जो मेरे पास अंग्रेज लोग पढ़ते थे 80 से 84 तक वो दोबारा फोन करके आए थे सिकंदरी चल रहे हम लौट करके आए वो अपने चला गया वहां से कलकत्ता वगैरह से ट्रेन से और नए ट्रेन से कटनी उतरा पंडित जमुना के शास्त्री से मिलना था और फिर से आके फिर वो ट्रेन पकड़ी रिजर्वेशन नहीं था कि भोपाल तक जाना है वहां जाएंगे नहीं जाएंगे जैसा भी होगा तो उसमें बैठा और वो डिब्बा जबलपुर में आने तक गया और वो उस समय बजे रहे थे करीब 10:30 तो मैं तो अपना सो गए लोग बैठे थे अब वो सब के सब उतर गए और डिब्बा कट करके फैंटिंग की तरफ जा रहा था इतने में किसी ने एक सौ घटनाएं गए किसी वाले से कुछ सो रहा नींद नहीं करनी थी हम सुन रहे गाड़ी चल रही क्या भ्रम हो रहा है और संदेह हो रहा है एक मिनट ठंड है भाई किधर जा रहे तो ये क्या वो यार भी जा रहे किधर भाई भोपाल जा रहे अरे वो गाड़ी आने वाली मैंने कितना प्रमाण किया होगा बोलो ऐसा समय का काम आए फटाफट उतरा समझे ना और गाड़ी वहां हरी झंडी हो रही है
और कोई भी दे अगर जितनी ये बात लगेगी हृदय हम हमने कभी भी थोड़ी चीजें अचानक कही थी कि ये जलवायु का वचन अनंत कुमार को नहीं प्रदान करेगा कुछ अनंत कुमार को ये कर चुकी था तो कौन सी धूल रह जाती थी बार बार जिसको पैतालीस साल तक गुरु ने संकोच से जीरो का बीच कर दिया अपने अमूल विचारों पर थे हूं कौन थी क्या देखे सुश्रुत जी मालूम पर कौन सामने बदलना चाहिए राशि के जरिए ऐसा विचार विधि सुंदर शांत भावी शुरू कर तो सर्वराशि ये किया कितने दिन में ये कर लेगा तो निश्चित उसकी दृष्टि ये बने वो जो कंगन को छोड़ के सोने पे आ जाती है ना ऐसे यहाँ पर एक पर्याय की छूट करके दृष्टि हो जाएगी और हर पर्याय दशा में पूरी तरह सुनता में आपको शांति संपर्क अनुभव हो जाए
वो बोले दूसरी
हो गया और इसमें
चलो मैं तो चुप
आज आपने बताया कि शुद्ध ज्ञान विकल्प रूप ही होता है तो निर्विकल्प अनुभव के काल में सदमत के शुद्ध ज्ञान को क्या होता है देखो ये एक बात है पहले तो विकल्प के दो अर्थ हैं जिनाभों में एक विकल्प कहते हैं इच्छा पूर्वक कोई भी कार्य हो वो राग जो कहलाता है उसका नाम विकल्प है दूसरा विकल्प ये है कि ज्ञान में ये बदलते रहते हैं उसको भी विकल्प कहा जाता है ये दो प्रकार के विकल्प होते हैं तो जब शुद्ध ज्ञान विकल्प रूप है हमने कहा तो वहाँ बताने का इतना ही प्रयोजन है कि शुद्ध ज्ञान में भी चाहे वो गुण स्थान आठवें गुण स्थान में जीव पहुँच जाए वहाँ भी शुक्ल ध्यान के काल में भी विकल्प चलता है पर काय का विकल्प देयांतर अर्थांतर संयायणी और योगांतर इस प्रकार के विकल्प चलते हैं और विज्ञान के विषय बनते हैं सहज बनते हैं पर वहाँ लाभ नहीं होता इसलिए एक अपेक्षा देखो तो वो आठवें गुण स्थान वाला जीव शुद्धोपयोगी होने से या शुक्ल ध्यानी होने से निर्विकल्प है और दूसरी अपेक्षा देखो तो वहाँ भी विकल्प हो रहे हैं ये से ज्ञानतर बना चलो इस ये अपेक्षा से उस शुद्ध ज्ञान को विकल्प ही रूप कहा जाता है क्योंकि उसमें ज्ञानतर बना अनिवार्य है उसकी क्षमता ही ऐसी है कोई भी उपयोग लंबे समय टिक ही नहीं सकता अंतर्मूर्त के अंदर उसको पलट जाने की अनिवार्यता इसलिए वो ज्ञे से ज्ञानतर होता है इस कारण उसको विकल्पात्मक कहा गया
फिर वो केवल ज्ञान को सविकल्प कहा है उसका क्या अर्थ
केवल ज्ञान को सविकल्प ये सपेक्षा कहा है विकल्प का एक अर्थ ये होता है कि जो वस्तु में भेद किए बिना वस्तु जानने में आती वो निर्विकल्प कहलाती और जो वस्तु के विशेष जानने में आते हैं वो सविकल्प कहलाते केवल ज्ञान में ज्ञान है ना इसलिए जगत के जितने पदार्थ हैं वे सब विशेष भेद रूप जानने में आते हैं इसलिए वो केवल ज्ञान की सविकल्प है लेकिन केवल दर्शन जो है वो निर्विकल्प है
सामान्य प्रतिभा
सामान्य प्रतिभा तो विशेष
प्रतिभा
बस इतना इसके सपेक्षा केवल ज्ञान को ही सविकल्प बोला जाता है और आगे देखिए इसमें लिखा है आज आपने कहा था जहाँ तक विकल्प है वहाँ तक कर्ता कर्म पना एक बात बता दूं प्रश्न है कि ऐसा क्यों पहली बात तो ये है कि मैंने कहा जरूर था पर मैंने अमृत चंद्राचार्य का कलश सुनाया था विकल्प कहा परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम न जातु करती कर्तृत्व सभी कल्प से ये सुनाया था और उसका अर्थ यही होता अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है कि जब तक तुम्हें विकल्प होते रहेंगे तो विकल्प जो हो रहे हैं वो राग रूप विकल्प हुए हैं उसका वास्तव में देखा जाए तो विकल्प के काल में जीव अनुभव करता है कि राग के साथ में जोड़ता है बोलो राग के साथ में जोड़ता है तो राग के साथ में जुड़ा होगा तो आश्रय बंद हुआ होगा कि ज्ञाता दृष्टा रहने के जैसे निर्जरा हुई होगी आश्रयबंद हुआ होगा वो आश्रयबंद किसके हुआ होगा उसी जीव को के कोई दूसरे को तो वो उसको बंद हुआ है उसका अर्थ ये है कि उस विकल्प का चाहे वो कमजोरी बस विकल्प वो क्यों ना हो पर विकल्प का कर्ता वो कहलाएगा कर्म तो विकल्प के करता है क्या ही ख्याल है विकल्प हुआ है बात सच है तो किसने किया
विकल्प करने वाले ने विकल्प किया है कि उसको जानने वाले ने विकल्प किया है। अश्रद्धा की अपेक्षा वो उसका ज्ञाता भी रह सकता है, और ज्ञाता रहेगा तो श्रद्धा अपेक्षा वो उस विकल्प का कर्ता नहीं कहला सकता। लेकिन विकल्प हुआ है और तुम्हारी कमजोरी से हुआ है, इसलिए उसका कर्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता, तुम ही उसके कर्ता। जिनको अपने विकल्पों को मिटाना हो, निर्विकल्प होना हो, वे वास्तव में ऐसा स्वरूप का आश्रय ले रहे जिसमें ज्ञाता दृष्टापना बना रहे और कोई प्रकार की इच्छा या राग पैदा न हो, तो निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है। इस अपेक्षा से जहाँ तक विकल्प रहता है वहाँ तक कर्तापना रहता है, और जब विकल्प मिट जाता है तो अनुभव हो जाता है, ऐसा उसमें आया था। ये विकल्प वाले तीन आए। एक और क्वेश्चन आया, ये देखो मोना के टेलीफोन स्वाध्याय में आपने बताया था कि हमें मुख्यतः बुद्धिपूर्वक विकल्प होते, जैसे कि मुझे खाना खाना हो, भोजन करना हो, तो भोजन करने का विकल्प होता। अब जरा बुद्धिपूर्वक किसको कहते हो और बुद्धिपूर्वक किसको कहते ये बता देंगे, घर समाधान हो जाएगा। बुद्धिपूर्वक कहते हैं जहाँ उपयोग इच्छा, इच्छा के कारण उपयोग चंचल होता है, कोई इच्छा पैदा हुई और उपयोग चला उस तरफ, तो ये बुद्धिपूर्वक कहलाता है। अबुद्धिपूर्वक ये कि हमारी कोई इच्छा उसकी है नहीं और वो वस्तु का विचार आ जाए तो अबुद्धिपूर्वक, हमने सोचा और वो ही विकल्प किया तो वो हो गया बुद्धिपूर्वक। जैसे उदाहरण देते हैं, सामायिक करने की वो बैठा तो ऐसा विचार करके बैठा है कि मैं अशुभ भावों का चिंतन नहीं करूंगा, घर आदि का चिंतन नहीं करूंगा, मैं तो देव साथ गुरु का चिंतन करूंगा या आत्मा का चिंतन करूंगा, ये बुद्धिपूर्वक लेके बैठा और वो बुद्धिपूर्वक उसमें उपयोग लगाए है, तो उसके कोई भी अशुभ चीजों का याद नहीं आ रही, विकल्प नहीं आ रहा। लेकिन अचानक कोई सहज ख्याल में आ गया, ये तो नहीं करने के लिए बैठा था लेकिन आ गया ख्याल में, चाबी आज रख के आए थे नहीं ठीक से तिजोरी, अब आगे याद आ गए तो वो अबुद्धिपूर्वक याद आई, समझ आया। और जो जो स्वभाव करेंगे वो बुद्धिपूर्वक किए, बुद्धिपूर्वक ना इच्छा पूर्वक, समझ आया ना। इसलिए बुद्धिपूर्वक अधिक विकल्प होते हैं जीवन में, अबुद्धिपूर्वक वाले विकल्प क्वचित और कदाचित ही होते, कैसा नहीं होते ज्यादा भी। आप देखो ना आपकी जितनी परिणति होती है, प्रवृत्ति होती है, पहले इच्छा होती है कि परिणति हो जाती है, बोलो, इच्छा का अनुसरण करने वाली परिणति होती है। मंदिर आने का विकल्प आया, तुरंत मंदिर को आ गए। अब घर जाने का विकल्प आया, घर चले गए। जैसे विकल्प आते हैं वैसा प्रणमन देखने में आता है, बुद्धिपूर्वक, और हमने तो सोचा ही नहीं था और वो चीज याद आ गई, वो अबुद्धिपूर्वक है। पूजा कर रहे थे और पूजा करते काल में घर की कोई चीज याद आ गई, ये आज मैं मालूम नहीं किवाड़ लगा के आया हूँ तो खुले रह गए, अब आ गया याद, तो बुद्धिपूर्वक नहीं कहलाए, अबुद्धिपूर्वक कहलाए। हाँ और कर देते हैं,
एक है कि जिसमें आपको भाव है बिल्कुल अबुद्धिपूर्वक आती रहती है, जिनको कुछ सोचना नहीं पड़ता करना है,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा।
सुनिए सुनिए, पांच पेज से लिखाया गया और उससे जो प्रश्न करता है कि शादी आप कैसे हो, सुख प्रवृत्ति में उपयोग लगने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, और जब दोनों ही छोड़ना है, दोनों ही बंद के कारण है, तो हमें फिर ये क्यों ज्ञानी की इच्छा चाहिए, इसलिए हमें ये इच्छा है ना, तो जो चल रहा है और जो सहज होते हैं उसको करना नहीं पड़ता।
कौन अशुभ भाव,
अशुभ भाव दोनों प्रकार से,
अरे यहाँ प्रश्न पूछा है इन्होंने, भोजन करने का भाव आया और पूजा करने का भाव आया, ये बुद्धिपूर्वक आए कि अबुद्धिपूर्वक,
ये तो बुद्धिपूर्वक
बस इन्हीं का दृष्टांत दे रहे हैं, और जो हो रहे अबुद्धिपूर्वक वो बने रहे, शर्माई ने वो भी मैंने बता दिया। यहाँ तो केवल जो प्रश्न पूछा है उस पॉइंट पर ही हम बोल रहे हैं, शर्माई, इसलिए इसको बुद्धिपूर्वक लेना है। एक और लिखा इन्होंने, मोदी आदि का याद आ जाए, मोदी जी का, अब तो मोदी जी का याद ऐसा हो गया है कि आत्मा का उतना नहीं होता है याद जितना मोदी जी छा गए हैं हमारे ऊपर। तो देखो ये इस दौरान भी ये याद प्रश्न कर लिया, मोदी आदि का विषय में जो आ जाए विकल्प, वो मेरी इच्छा के बिना सहज ही आ जाते हैं या बुद्धिपूर्वक आते हैं। इसमें ये बात है कि अगर आपने सोचा ही नहीं था उनके विषय में और सहज आपको बिना इच्छा के वो बात उनका ख्याल आ गया तो वो अबुद्धिपूर्वक कहलाता है, और आप ही खुद सोचने लगे उनके विषय में उनका फिर ख्याल आया तो बुद्धिपूर्वक है।
एक सेकंड से पढ़ना चाहूंगा, एक मिनट एक सौ बहत्तर ज्यादा समझदार की टीका में आपकी छठी में पहली लाइन में लिखा है कि ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक मान बुद्धिपूर्वक कोई राजा जी नहीं होते, उसका मतलब श्रद्धान में कोई बुद्धिपूर्वक राग करने लायक नहीं रहा। उसके तुरंत बाद एक सौ सोलह में कलश है कि अब भी उसको अबुद्धिपूर्वक होती क्योंकि श्रद्धान में सब राग यही हो गया वो अपेक्षा है, तो उसको भी अबुद्धिपूर्वक के राग को भी जीतने के लिए वो बुद्धिपूर्वक अपने सरकारी ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है। ये अध्यात्म की व्याख्या। तो वहां पर राजेंद्र जी पांडे साहब ने बुद्धिपूर्वक किसे कहते हैं, सोलह में कलश की टीका में लिखा है जो परिणाम स्वयं को ज्ञात हो रहे हैं और माने मन पूर्वक इच्छा पूर्वक है, अन्य जीव भी अनुमान से जानने की ये व्यक्ति असत त्याग कर रहे हैं सोच रहा है, तो सब बुद्धिपूर्वक में रखे और जो बिना इच्छा के बिना अपने ज्ञान में आए बिना जो आ जाते हैं बाद में ज्ञान पकड़ता है भी सब बुद्धिपूर्वक रहेगी।
वो दूसरी शैली है अध्यात्म शैली का, वो जो बुद्धिपूर्वक की चर्चा है यहाँ प्रश्न में वो बात है ही नहीं। चल रहे यहाँ प्रश्न में केवल जो खाने पीने में हुआ और जो बिना सोचे भी हो गया, मोदी जी का याद आना वो अबुद्धिपूर्वक हो गया, और बाकी जितना भोजन करने का याद आया, पूजा करने का याद आया, मंदिर जाने की याद आई, वो सब बुद्धिपूर्वक है ऐसा है। भाई इतना बताना हमको, ऐसे में सब भेद तो बहुत से है और वो पूरे बताने का यहाँ प्रयोजन नहीं है, आपका क्वेश्चन का सीधा आंसर देने का प्रयोजन। और एक आखिरी इसका ले रहे हैं और जो दो नए आए हैं ये बाद में लेंगे,
ये ले दो, ये मेरे वाले।
हाँ आपके भी ले। हम सब अपने दैनिक आचार विचार में निरंतर मैं शरीर आदि हूँ, शरीर हूँ पर की क्रियाओं में मैं कर सकता हूँ आदि मान्यताएं बनाए रखते हैं, और दिन में एकाध घंटा राग से भिन्न अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में एकत्र स्थापित करने का यथाशक्ति प्रयास करते हैं, किंतु कोई सफलता नहीं पा रहे। आपको मिलेगी भी नहीं सफलता, क्यों नहीं मिलेगी उसका कारण बता दें कि जिसकी बुद्धि में कर्ता बना बैठा है वो तो उसके लिए आत्मा के अनुभव की सफलता मिलना तभी तक संभव नहीं है जब तक कर्तृत्व बुद्धि छूट न जाए, एक बार। और दूसरी बात ये है कि इसमें इतना सुधार करना था, सुधार ये करना था कि मैं तो नहीं चाहता हूँ और मेरे श्रद्धाओं के ये शरीर आदि भिन्न है, फिर भी हमें शरीर के प्रति राग आ जाता है, देह के प्रति राग आ जाता है, इससे पुत्रादि के प्रति राग आ जाता है, यद्यपि मैं मानता हूँ कि जो मुझसे भिन्न है, जो मेरी देह मुझसे भिन्न है, तो ये स्त्री पुत्रादि कहाँ से मेरे हो सकते, ऐसा मेरा दृढ़ श्रद्धान है, फिर भी इनके प्रति राग आ जाता है, तो वो राग आ जाता है उसमें मिथ्यात्व का अभिप्राय नहीं आया, आया है वो राग, और वो मगर चढ़ती कोई जनित राग कहलाएगा, कमजोरी जनित राग कहलाएगा, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अनंत संसार नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये मैं इनको अपना मानता हूँ और इनको छोड़ने का प्रयास करता हूँ तो तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा, पहले इन्हें अपना मानना छोड़, आइए और फिर तुम्हारी जितनी सामर्थ्य पुरुषार्थ बढ़े वे अपने आप छूटे बिना नहीं बढ़े, ये है इसमें स्थिति। और मैं इसका एक बहुत बढ़िया दो आसना देता हूँ अभी नाटक समयसार का, वहाँ एक प्रश्न उठाया है नाटक समयसार में कि ये ज्ञानी और अज्ञानी का हमने परिणाम और क्रियाएं तो सेम देखी, लेकिन आप ज्ञानी को तो कहते हो यानी कहना चाहिए निर्बंध बोलते हो उसके लिए अबंधक बोलते हो, और हमको कहते हो तुम बंद करने वाले हो, ये कैसा न्याय। तो शिष्य ने ऐसा पूछा प्रश्न के जो जग में विचरे मति मंद माने अज्ञानी, स्वच्छंद तथा वर्ते बुद्ध तैसे, बुद्ध माने ज्ञानी, ज्ञानी भी वैसे ही वर्तन करता है जैसा अज्ञानी वर्तन करता है, क्या क्या, चंचल देन असंयम नैन शरीर सलेह यथावत जैसे, जैसे वो अज्ञानी के वैसे ज्ञानी के भी, वो भी लाइफ वाइज साबुन से नहाता है और ये सम्यक दृष्टि भी उसी से नहाता है, समझ आगे के लिए बहुत सी ये भी तर्क करते हैं, सम्यक दृष्टि बोलते और देखो तेनो काल वाले कपड़ा पहनते, तो मैंने कहा कौन से कपड़ा पहने तो सम्यक दृष्टि होंगे, अरे सम्यक दर्शन का तो लक्षण तत्वा श्रद्धाना सम्यक दर्शन, अब वो मैं कपड़ा श्रद्धाना तो कपड़ा कैसा पहने कहाँ से ला लेते हो तुम, मुझे तुम्हारी कल्पनाएं आदम को कभी पड़ा नहीं है, इसलिए ऐसी कल्पनाएं उठना अनिवार्य है। तो देखो यहाँ लिखा कि वो आगे और लिखा उसने कि क्यों जब मैं निचले मति मंद स्वच्छंद तथा वर्ते मुख जैसे चंचल नैन असंयम नैन शरीर स्नेह यथावत जैसे राग विरोध परिग्रह संग्रह मोह विलास करे तहां ऐसे ऊंचक सिद्ध आचार्य सोये सम्यक मंत्र निरास्तव कहते।
ये प्रश्न है,
अब जवाब। पूरा अवस्था जो सुवासो कर्म की ने ते उदय आय नाना भांति रस देते कई तो साता कई असो असाता पर दोनों में राग न विरोध समझे थे, समझे थे, दोनों को समान जानता है, ये जानता है, किसी को भला नहीं मानता हो, किसी को बुरा नहीं मानता, समता भाव रखता है। दोहो में राग न विरोध संकेत है, यथा योग क्रिया करे पे फल की ना इच्छा धरे। क्या कह रहे हैं, यथा योग क्रिया करता है परंतु फल की वांछा नहीं करता, रहे सावधान, यथा योग क्रिया करे पे फल की ना इच्छा धरे। जीवन मुक्ति को विरद कह लेते हैं, जिंदगी क्या है, अकर्तृत्व स्वभाव ये मेरी जिंदगी है, यही मुक्ति का मार्ग है, तो ये उसको ग्रहण कर लेता है। जीवन मुक्ति को विरद कह लेते हैं, साते ज्ञानवंत को निराश्रव कहत सर्व मुद्धता सो न्यारो भयो शुद्धता समेत है। दृष्टि शुद्ध स्वभाव पे जम गई है और पर्याय की मूर्ता उसकी मिट गई, ये कारण से उसको आश्रय नहीं होता है। नाटक समझदार में ये पूरा हो गया आपका, अभी दो जो हैं आपके बाद में आखिर अब भी लेते हैं इनके बाद, अभी बहुत से ये आपके दो ही तो बचे हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमारे पास तो दो स्पीड है।
अनेकांतरण प्रकार कोर्ट में आपने आज तीन प्रकार के अनेकांत की चर्चा की, इनमें से तीसरे प्रकार में अनेकांत के बारे में थोड़ी नीचे स्पष्टता करने की कृपा करें। जो आज अनेकांत का तीन प्रकार जो चला है उसमें पहला प्रकार है पर से पृथक होकर अपने जीव पदार्थ में आना, तो जीव पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं, तो जीव पदार्थ में अपनी अस्थि बोली जाती है और पर पदार्थ की उसके उसमें नास्ति बोली जाती है, तो वो अस्थि नास्ति अनेकांत हो जाता है। उसके बाद में जीव जो जीव पदार्थ है उसमें से जीव तत्व निकालता है, तो जीव पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय को बोला जाता है और उसमें से जीव तत्व त्रिकाली द्रव्य को बोला जाता है, तो त्रिकाली द्रव्य की अस्थि और उसमें परिणाम की नास्ति उसको बोला जाता है दूसरे प्रकार का अनेकांत। और जब ये ऐसे दूसरे प्रकार का अनेकांत उसके ख्याल मानता है तब वो जीव पदार्थ पर जीव तत्व पर उसकी दृष्टि चली जाती है, जीव तत्व पर दृष्टि जब चली जाती है तब दृष्टि पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है, और दृष्टि पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है तो वो सम्यक ज्ञान अनेकांतिक होता है, वो अनेकांतिक सम्यक ज्ञान द्रव्य को द्रव्य रूप और पर्याय में जो आनंद आता है अनंत गुण में अनंत गुण की पर्यायों का जो परिणमन शुद्ध रूप परिणमता है उसको पर्याय को भी जानता है और द्रव्य को भी जानता है, एक साथ द्रव्य पर्याय को निर्विकल्प दशा में जानता है, उसको बोला जाता है निर्विकल्प प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान। इस तरीके से ये तीन प्रकार का अनेकांत होता है। उपयोग लक्षण जब उपयोगवान के उपयोगवान को ग्रहण करेगा तो वह अकेला उपयोगवान को ही पकड़ेगा या उपयोगवान को उपयोग के अभेद को ग्रहण करेगा। उपयोग लक्षण जब पकड़ने वाला है तो लक्षण फिर लक्ष्य को ही पकड़ता है, लक्षण लक्ष्य को पकड़ता है उसी टाइम तो अनुभूति होती है, तब उसको लक्षण और लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। पकड़ने में तो लक्ष्य ही आता है, पकड़ने में दो चीज कभी नहीं होती है। जब सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, तब त्रिकाली द्रव्यों पर दृष्टि पड़ती है और ज्ञान भी त्रिकाली द्रव्य पर चला जाता है और उस ज्ञान का फल आता है, उसमें द्रव्य पर्याय का सम्यक ज्ञान वर्तता है।
ત્યાં સુધી પહોંચવું એનું પ્રેક્ટિકલ કરવા લૌકિક અથવા રોજિંદા જીવનના દાખલાઓ આપી સમજાવવા સમજાવશો કે ઉપર દ્રષ્ટિ હે જીવજી અનાધિકાર છે એટલે વો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હોગે ઉસકી સાથ મેં એકત્વ બુદ્ધિ હોતી હૈ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે જબ જીત કે કો જાણતા હૈ ઉસમેં એકત્વ બુદ્ધિ પૂર્વક ની જાણતા હૈ તો ઉસકા અભાવ હો જાય ઔર અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સે અપને આત્મા જાણને મેં આ રહા હૈ इस प्रकार का लौकिक में किस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करना, ऐसा एक प्रश्न है। अभी ये जो जानने में आ रहा है वो गेय तो नहीं जानने में आ रहा है, वो तो सबसे पहले नहीं करना है, वो उसको भी कर सकता नहीं हूँ ये मेरा नहीं है, वो तो पहले हिस्से के पहले वेदना में आ जाता है। एक कृमि का दूसरे जगह से कोई संबंध नहीं है, राग मेरा नहीं है, इस प्रकार का वेदना तो सबसे पहले करना चाहिए। फिर अपना जो प्रमाण है, प्रमाण चैतन्य प्रमाण, चैतन्य द्रव्य है और उसका चैतन्यमय परिणाम है, ये दो भाव में आने के बाद में वो ज्ञान जो है वो अपने कारण से ही स्वपर प्रकाश रूप से परिणम रहा है। जैसे जैसे बाहर में ज्ञान है और उसका परिणम चलता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा जो ज्ञान रूप से परिणम रहा है वो उसी प्रकार से जान्य रूप से परिणम रहा है। मगर वो उसके ज्ञान के आकार ऊपर जब तक दृष्टि रहती है तब तक वो ज्ञान जान्य में आ रहा है, इस प्रकार की उसको बुद्धि हो गई है, ऐसा है नहीं। ज्ञान का जो होता है वो जानने में आ रहा है, उसके कारण से वो ये मेरे को जानने में आ रहा है ऐसी बुद्धि नहीं होती है, मगर उसकी दृष्टि उधर पड़ी हुई है, उसमें लुप्त है, उसमें वो वृद्ध है, वो उसके साथ में उसकी मैत्री प्रवृत्ति है, इसलिए वो ये और ज्ञान वो दोनों एक में हो गए है, इस प्रकार की उसको बुद्धि हो गई है। इसलिए उसको तोड़ने के लिए ये ज्ञान का संकल्प तोड़ने के लिए, इंद्रिय ज्ञान का अभाव करने के लिए वो जो भी जानने में आ रहा है वो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, जो ये क्या का जो ज्ञान में हो रहे हैं उसको गौण करके वो जो है वो ज्ञान के क्रिया का नहीं है, वो ज्ञान का है, और ज्ञान का है सब ज्ञान के करोड़ है, वो सब ज्ञान ही है। इस प्रकार से उसको अवैध तरीके एक ज्ञान मात्र तरीके वो जानना, तो वो एक समय में जो जो भी एक जानने में आ रहा है वो उसको मैं करता तो नहीं हूँ, उसको फेरफार करने की तो बात नहीं है, अपने जो परिणाम में क्रमबद्ध हो रहा है उसको भी फेरफार करने की बात नहीं है, मगर उसमें जो जानने में आ रहा है सब ये जानने में आ रहा है, उसको भी वो अपना एक आकार जानने में आ रहा है, उसको भी गौण करके मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे को जो भी जानने में आ रहा है उसमें जो क्रियाकार हो रहे हैं उसको कोई व्यवस्था की वस्तु नहीं है, इसको जान लू ऐसा नहीं है, वो ज्ञान में स्वतंत्र मन एक जानने में आ रहा है और वो कोई प्रयोजन भी नहीं है, जो कुछ पद प्रकाशक पना अपने ज्ञान में जानने में आ रहा है उससे अपने को ज्ञान भी नहीं होता है और उससे अपने को सुख भी नहीं मिलता है, इसलिए वो प्रयोजनभूत नहीं है। ऐसे भाव का न्याय से वो जानने में वो बारम्बार प्रयोग में लेके वो मेरा जो है वो ज्ञान ही है और ज्ञान और ज्ञान तन्मय है, इस प्रकार से बारम्बार अभ्यास करने से वो ज्ञान जो सामान्य है वो ख्याल में आ जाता है। वो पर ये है वो जानने में नहीं आता है, उस प्रकार के ज्ञ के आकार जो है उसको मैं गौण करता हूँ और मैं ज्ञान सामान्य को ग्रहण करके वो ज्ञान जो है वो एक समय की बजाय उसको भी गौण करके वो निकाली अपना जो न्याय भाव है उसके ऊपर दृष्टि ले जाने से वो अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का अभेद में आत्मा का अनुभव होता है, इस प्रकार की बात है, मगर उसमें एक सूक्ष्म बात और भी है कि ज्ञान का स्वभाव सर्वज्ञ बना है, सबको जानना वो ज्ञान का स्वभाव है, उसका मैं आधार दे देता हूँ। वो मुझे बुद्धिस्ट इस प्रकार की ये प्रकार की देते हैं कि अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत क्षेत्र है, क्षेत्र की अनंतता बताते हैं, काल की अनंतता बताए, भाव की अनंतता बताए, वो ज्ञान का स्वभाव की अनंतता बता के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, वो ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का सामर्थ्य, ज्ञान की शक्ति सिद्ध करना चाहते हैं, और जो भी है वो ज्ञान ही है। इस प्रकार से ज्ञान ऊपर दृष्टि आके वो ज्ञान ऊपर दृष्टि आवे, उस प्रकार से एक और प्रकार भी ज्ञान प्रधान है, वो उसका मैं आधार दे देता हूँ। जैसे वो अगर वो स्पर्श स्वरूप का जो बोल है उसमें तीसरा बोल है, चौथा बोल में अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जावे तो सूक्ष्म भाव का अभाव होने से वो भावेंद्र के अवलंबन से एक एक गेय को नहीं जानता है, उस प्रकार से वो गेय को जानना बंद करके अपने अतिथि ध्यान से अपने आत्मा को जान लेता है, ऐसा अर्थ आत्मा का स्वभाव है। और उसके बाद में जो बोल लिया है कि वो क्या लिया है कि सकल विषय के विशेषो में साधार, सकल विषय हो जितने भी विश्व में जो पदार्थ है वो सबके विषयों में साधारण एक संवेदन परिणाम जानना मेरा स्वभाव है, एक साथ में सबको जानना मेरा स्वभाव है, और इसलिए वो आत्मा अर्थ है, अर्थ है माने एक एक ज्ञेय को खंड खंड करके जानना हो मेरा स्वभाव नहीं है, सबको एक साथ में जान लेना, सबको एक साथ में जान लेने से उसको वो इंद्रिय ज्ञान खंड खंड ज्ञान नहीं प्रकट हो गए, अपना सर्वज्ञ स्वभाव के ऊपर दृष्टि चली जाती है, सर्वोत्तम मेरा स्वभाव है, इस प्रकार की मेरी पर्याय का सामर्थ्य है, इस प्रकार की पर्याय का मेरा स्वभाव है,
इस ऐसी मेरी शक्ति है, उस प्रकार से उस ज्ञान को जब वो जानता है तब वो एक एक ज्ञेय को खंडन करना वो मेरा स्वभाव नहीं है, उसका अभाव हो गए वो अखंड ज्ञान प्रकट होके अपने असरों के स्वभाव को जान लेता है। ये एक प्रकार युक्ति है, इस प्रकार से भी ज्ञान सामान्य के ऊपर के द्वारा अपने असरों के स्वभाव को जान सकता है। एक और प्रश्न है कि स्वानुभूति दर्शन ना बोल 28वां निर्विकल दशा वक्त ना सोबर प्रकाश से एम कहू कि अंतर में पोते पोताने जाने से अने पोताना आनंद गुण बजावे जाने से ते निर्विकल दशा ना काल नु सोबर प्रकाश पहुंचे, परंतु बोल 429 में एक विषय पर एम कहवा मांग्यू छे कि निर्विकल दशा में साधक द्रव्य गुण पर्याय गणी ने सहज जाने से पर्याय नु वेदन अने द्रव्य नो स्वभाव सहज एक साथ तेने ज्ञान तेने अंतर में जणाय छे, उपयोग एक साथ वेद पैरागी ना बधुं जाणी जाय छे, ઉપરના બંને બોલોમાં કઈ રીતે સુમેળ છે તો મૂળ પર્યાય હે કોણ પણ જાણને જાતી જો અભેદ પણાયું અપના હે મુખ્ય પણ જાણને જાતા એટલે અભેદ પણાયું જ્ઞાન હે જ્ઞાન જ્ઞાન અપના સ્વભાવ હે તો અચાનક પણ એની અપેક્ષા છે જ્ઞાન ઢોળતો હે આનંદ વગેરે જો પ્રગટ હોતા હે સજા કી પર્યાય ચારિત્ર કી પર્યાય ચિંતા કેટલી હે શાંતિ કેટલી વર્ત રહી હે ઈશ્વર સાથે જ્ઞાન અન્ય ગુણો પણ જાણતા હે સોબર પ્રકાશક પણા હે और उपाधि पड़ा की एक अपेक्षा भी अपन सोबर प्रकाशक में दे सकते हैं कि जिसमें अपना है जिसको मुख्यता करके जानता है जिसको उपाधि पड़े आश्रय पड़े जानता है ऐसा द्रव्य स्वभाव है उसको है और उसकी अपेक्षा से जितनी भी पर्याय प्रकट होती है और गुण के भेद है वो सब पद है, इस प्रकार से सोबर प्रकाशक पढ़ना वो प्रकट होता है। ऐसा सोबर प्रकाशक पढ़ना जो अंदर का होता है वो तो एक प्रकार से वो उपयोग की निर्मलता है, सूचना है वो जानने की उसकी शक्ति कम है, उद्योगात्मक पर जानता है, जब पद की तरफ होता है तभी पद जानने में आता है, स्व की तरफ होता है तब स्व जानने में आता है, मगर उसका स्वपद प्रकाशक स्वभाव है उसका नाश नहीं होता है। तो अपने स्वभाव को जब वो अपने को पहचानना है तो स्वपद प्रकाशक बना अपना स्वभाव करेंगे, पूरे स्वपद प्रकाशक स्वभाव का जो स्वभाव है स्वरूप है वो अपने को जानना चाहिए कि स्वपद प्रकाशक क्या स्वभाव है, कि मेरे आत्मा भी मेरे जानने में आ रहा है, स्वर प्रकाश अखंड ज्ञान स्वभाविक मैंने वो ही जानने में आ रहा है और उसमें सब ये लोकालोक अभी मेरे जानने का मेरा स्वभाव है, इस प्रकार से अपने को अपने ज्ञान स्वभाव को जानना चाहिए। अभी इसका स्वभाव प्रकट नहीं है इसलिए अपनी जानने की शक्ति प्रकट नहीं है, मगर ज्ञान का स्वभाव जो है वो अपने को ही जानने ऐसा नहीं है, और स्वर किशन में बोले तो स्वर को जाने और स्व किशन में बोले तो स्व को जाने, इस प्रकार की सूचना की निर्बलता है इसलिए वो ज्ञान इस प्रकार से जानने को प्रवर्तन होता है, मगर वो निर्बलता को आगे नहीं करके अपने ज्ञान स्वभाव को आगे करके वो स्वर प्रकाश तक अपना कैसा स्वभाव है वो अपने को जानना चाहिए, और निर्विकल दशा में साधक त्रिगुण पर्यटन ने सहज पर जाने से पर्याय वेदन ने द्रव्य स्वभाव सहज एक साथे तेने अंतर में जगह से ઉપયોગ એક સાથે ભયસ બેન પહેલા રીતે બધું જાણી લે છે, કોઈ વાત છે કે જો હે વો અભેદપણે અપને આત્મદ્રવ્ય કો જાણતા હે, અભેદપણે સે દેખો તો અભેદ અપના આત્મદ્રવ્ય કો જાણતા હે, મગર વો સહજ ઉસકા શરીર તાકા સ્વભાવ હોને સે એક એક ભેદ કો અંદર મેં રહે હુએ આત્મા આનંદ ધર્માત્મક હે અનંત ધર્માણ તત્વ પશ્યંતી પ્રત્યગાત્મન અનેકાંતમયી મૂર્તિ નિત્ય બેમ પ્રકાશતા, જો અપને આપણે આત્મદ્રવ્ય અભેદપણે હે તો અભેદપણે જો આ जानता है उसको निरिकल स्वभाव कहता है। अभी पंडित जी ने स्पष्ट किया कि अभेद आत्मद्रव्य को जानता है तो निरिकल बनाए ज्ञान निरिकल भी है और निरिकल में सविकल भी है, वो भेद पार के जानना वो ज्ञान का स्वभाव है वो जब नहीं जाता है तो सहज द्रव्य बने द्रव्य गुण बने जैसे जैसे है वो सब जानने में उसको आता है।